La 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 la
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है
नई दिशा। प्रेमा, ये बताओ कि जिंदगी के बारे में तुम क्या सोचती हो?
जिंदगी?
हाँ,
देखो, जिंदगी ईश्वर का दिया वो वरदान है जिसका हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।
बिल्कुल,
हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।
हाँ।
वैसे जगत, तुम क्या कहते हो जिंदगी के बारे में?
भाई, मेरा तो यही मानना है प्रेमा कि ये जो जिंदगी हमें मिली है ना, इसे हमें जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना।
दोस्तों, ये जिंदगी जीने के लिए है और हम सब इसे जीते भी हैं, लेकिन निर्भर आप पर करता है कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो भाई हम आपको बता दें कि हमारे कई सारे ऐसे दोस्त जो कि HIV पॉजिटिव हैं, वो जिंदगी से निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जिंदगी को हर हाल में जीना चाहिए, खुश रहकर जीना चाहिए।
बिल्कुल दोस्तों, भला मौत से पहले जिंदगी का साथ छोड़ देना कहाँ की समझदारी है, और किसने कहा कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता।
जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है प्रेमा, अगर वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ART की दवाइयों का सही इस्तेमाल करे।
और दोस्तों, ART की दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए और इन्हें लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट जानो अनजाने में। दोस्तों, ART HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो जाती है अगर व्यक्ति का CD4 200 से कम है।
यानी कि दोस्तों, एक स्टेज पर व्यक्ति के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है।
लेकिन ये बात भी याद रहे कि ART की दवाइयों की शुरुआत डॉक्टर की सलाह व उनके निरीक्षण में ही करें।
ART की दवाइयाँ शुरू करने के बाद इसे नियमित रूप से लें और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
और हाँ, अगर आप किसी समय पर ART की दवाई लेना भूल जाते हैं तो बाद में दो खुराक एक साथ लेकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश कभी ना करें, बल्कि ध्यान रखें कि ये गलती दोबारा ना हो।
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर ऐसी गलती बार बार दोहराएंगे तो ऐसे में HIV के वायरस को सक्रिय होने का मौका मिल सकता है और आपका CD4 और भी नीचे जा सकता है।
तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें जो आपको ART की दवाइयाँ लेते समय ध्यान रखनी होंगी।
और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमसे HIV के संबंध में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे खतों, ईमेल और SMS के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपना सवाल, अपनी परेशानी हमारे साथ बांट सकते हैं। नंबर है 9717678223 और हमारा ईमेल ID है naydisha@gmail.com।
कब से उसको ढूंढता हूँ, भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशियाँ।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट का,
जिसका नाम है भेजा फ्राई।
दोस्तों, सबसे पहले हम आपको देते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि पहला कॉन्डोम किस चीज का बनाया गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन C, यानी कि बकरी की आंत और कपड़े का।
और एपिसोड 24 का सही जवाब देकर हमारी आज की भाग्यशाली विजेता बनी है फौजिया अहमद बिजनौर से। आपको हमारी तरफ से ये भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब आज का सवाल।
और आज का सवाल है, एड्स अवस्था को ये नाम कब दिया गया? अपना सवाल फिर से सुनिए, एड्स अवस्था को ये नाम कब दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1912, बी 1921, सी 1982 और डी 1990। अपने ऑप्शंस फिर से सुनिए, ए 1912, बी 1921, सी 1982 और डी 1990।
तो दोस्तों, अगर आप भी ये भेजा फ्राई कैप जीतना चाहते हैं तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए और उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए ND29 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर।
और दोस्तों, अब वक्त है आमने सामने का।
दोस्तों, आमने सामने में आज हमारे साथ हैं एक विवाहित दंपति। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मैं नरेंद्र कुमार हूं। मैं डॉक्टर रामराव लोहिया हॉस्पिटल में एज ए कोऑर्डिनेटर की हैसियत कार्यरत हूं।
मेरा नाम रागिनी है। मैं नेको और D6 के अंडर एज ए काउंसलर काम कर रही हूं।
नरेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको HIV स्टेटस के बारे में कैसे पता चला?
अचानक मैं बीमार हो गया था और मेरे को रोज रात को 12 बजे बुखार चढ़ता था और मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी, यानी कि बहुत ज्यादा पसीने के आना, और देखते ही देखते मेरा जो वेट था 70 किलो से आधा रह गया था, यानी कि 32-33 किलो, जिसकी वजह से मेरे डॉक्टर ने मेरा HIV टेस्ट करवाया। जब HIV टेस्ट मेरा करवाया गया तो उस टाइम मुझे पता लगा कि मैं इस वायरस से जूझ रहा हूँ।
नरेंद्र जी, जब आपको अपना HIV स्टेटस मालूम चला तो आपके दिल पर क्या गुजरी? मेरा मतलब क्या परिस्थितियां पैदा हुई उस वक्त?
सबसे पहले तो इसके बारे में मेरे को कोई बेसिक ज्ञान तो था नहीं, लेकिन वहाँ की काउंसलिंग के हिसाब से जब मुझे ये पता लगा कि मेरी बीमारी ला इलाज बीमारी है, यानी कि अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा धक्का ये लगा मेरा जबकि वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे को ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं बहुत बुरे तरीके से इस रोग से ग्रसित हूँ, और उस टाइम पे मेरे सारे लंग्स डैमेज हो चुके थे। और सबसे पहले तो मैं, यानी कि उन दो महान डॉक्टर जो उन्होंने मेरे को एजुकेट किया, काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बाद जब उन्होंने बोला काश हमें इस 24 घंटों से ज्यादा कुछ टाइम मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। वो 24 घंटे मेरे निकले जैसे तैसे है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर इन्हें काश 3 दिन मिल जाए, हम उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके बचा सकते हैं। लेकिन उसी पीरियड में उन्होंने मेरी वाइफ को पूरा जागरूक किया और उनके HIV स्टेटस के बारे में जाने की कोशिश की, उनको पूरा एजुकेट किया, मेरे से परमिशन ली, उनका HIV स्टेटस के बारे में जाना गया। जब उनका रिजल्ट आया, बहुत शुक्रगुजार हुआ ईश्वर के प्रति कि जिस वायरस से मैं जूझ रहा हूँ, मेरी वाइफ उस वायरस से नहीं जूझ रही। अगर मेरे पास जिंदगी नहीं है तो ईश्वर ने उनको सेफ रखा है। लेकिन फिर भी ये जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर दोबारा से कोमा में चला गया। कोमा के 5-6 दिन के बाद जब मेरी आंख खुलती है तो उस टाइम पे जब मैं अपनी वाइफ का चेहरा देखता हूँ, वो मैं कभी भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी न्यूजीलैंड के बारे में। उनको आए हुए 2-3 हफ्ते ही हुए थे
जी।
इनको वहाँ की सड़कों के बारे में नहीं मालूम है, इनको ड्राइविंग के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ईश्वर को और भी एक परीक्षा देनी थी। मेरे रूम के अंदर सब कुछ अवेलेबल था कि मेरे को अगर सिस्टर को कॉल करना है तो बटन दबाना है, लेकिन मेरे को यूरिन पास करना था और यूरिन पास करने के चक्कर में मैं बैल नहीं बजा पाया और सडनली मैं बेड से नीचे गिर गया। बेड से गिर गया तो मेरा जो राइट लेग था वो भी फ्रैक्चर हो गया। तो पता नहीं किन किन हालातों से मैं गुजरा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिन हालातों से मैं गुजरा हूँ उससे लोग प्रेरित हों।
रागिनी जी, परिस्थितियाँ तो बहुत दुखदायी रही, लेकिन आपने इन परिस्थितियों का कैसे मुकाबला किया?
जब मुझे इनका पता चला तो मैं एक तो अचंभे में हो गई, ये सब हुआ तो हुआ कैसे। पहला तो ये कि हम लोग न्यूजीलैंड में थे और बिल्कुल अकेले थे हम दोनों, हमारे साथ परिवार वाला कोई नहीं था। इस परिस्थिति में रह के मेरे को काम करने की भी अनुमति नहीं मिल रही थी। जब हमने काम करने की अनुमति मांगी तो पैनल बिठाया गया, उन्होंने मेरे सामने ये सवाल रखा कि आपके हस्बैंड जो हैं इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इन्हें छोड़ के आप दूसरी शादी कर लीजिए और आप अपनी जिंदगी बना सकती हैं, हम आपको यहाँ का वीजा दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम हिंदू नारी हैं, एक बारी शादी हो जाती है तो उसी घर से अर्थी निकलती है, और मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब देखते हुए मेरे को वर्क परमिट दिया, मेरे को काम करने की इजाज़त दी और मैंने काम किया। मैंने एज अ होटल में एज अ वेट्रेस काम किया, अपने आदमी का कंधा बनी और उनको मैं ठीक करके यहाँ वापस लेके आई।
वाकई आपने बहुत बुरे हालात का सामना किया, बहुत कठिन परिस्थितियों से आप जूझते रहे, तो फिर किस तरह से आप अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लेकर आए वापस?
कहते हैं ना, जिंदगी एक जंग है, मेरी जिंदगी भी एक जंग थी। तो चैलेंज तो बहुत इंसान के सामने थे, वहां पे मैं रह रहा था, परिस्थितियों में था, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा था, क्योंकि मेन उद्देश्य ये था कि मेरी ART स्टार्ट की गई। तो जो मेरी पहली मेडिसिन थी उसका नाम था कॉम्बिबीड एंड वीरोकॉम एंड एफाविरन, लेकिन फिर भी मेरे साथ और परीक्षा की घड़ी थी। ये मेडिसिन लेते हुए मेरे को एक साल हुआ था कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा। चल रही थी मेडिसिन, चल रही थी, सब कुछ था, दिस इज अ मेडिसिन इफेक्ट था या कुछ स्ट्रेस था मेरी जिंदगी का, हुआ। लेकिन उसके बाद फिर और भी कुछ विधाता को मंजूर था। 2000 जो लिखा गया था मेरी जिंदगी में फर्स्ट एक अटैक का होना, फिर 2001 में भी मुझे एक दोबारा अटैक हो गया, तो यानी कि मेरे को दो हार्ट अटैक भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। जब मैं वहां पे था ओवरसीज में, यानी कि न्यूजीलैंड में, तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मेरे रोग के प्रति हुआ। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप इस वायरस से जूझ रहे हैं, अभी तक हमने आपको ट्रीटमेंट किया है, हम आपके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, यू लिव इन दिस कंट्री ऑल्सो। तो वो जो परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं, वो जो मैंने कमा कमा के वकीलों को दिया है, एक एक टाइम खाया है, वो तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हाथ खड़े कर दिया, वी आर नॉट कंटिन्यू योर परमानेंट रेसिडेंसी, लेकिन फिर दोबारा मैंने एप्लीकेशन में प्राइम मिनिस्टर तक को लगाई, उन्होंने कहा हम आपको अगर 30 दिन में आपने अगर कंट्री नहीं छोड़ी तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन मैं हिम्मत फिर भी नहीं हारा। हमने अपनी मेहनत की, हमने उनसे टाइम मांगा 30 दिन का, मैंने अपनी और अपनी वाइफ की टिकट के लिए पैसा अरेंज किया, और जो भी हमारी गृहस्थी की चीज़ें थी उसको कार्गो के थ्रू मैंने इंडिया भेजा, और अपनी टिकट का पैसा अरेंज करने के बाद दो टिकट ली और हम लोग न्यूजीलैंड से इंडिया वापस आ गए।
नरेंद्र जी, वाकई आपने हिम्मत और हौसले के साथ मौत पर भी विजय प्राप्त की, और आपने बहुत अच्छी तरह से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला किया। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और साथियों, इतनी सारी जानकारी के लिए हम इनका धन्यवाद तो करते ही हैं, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में भी रागिनी जी और नरेंद्र जी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आज यहाँ पर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो आइए दोस्तों, देते हैं जवाब आपकी बात का। तो प्रेमा, आज हम अपने इस सेगमेंट में किसकी चिट्ठी पढ़ने वाले हैं?
जगत, ये चिट्ठी हमें भेजी है रमेश जी ने उत्तराखंड से, और ये हमें लिखते हैं कि HIV से ग्रसित व्यक्ति में उसका प्रभाव तुरंत क्यों नहीं दिखाई देता है, या कुछ साल बाद ही क्यों दिखाई देता है। रमेश जी, हम आपको बता दें कि HIV का वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले तो अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और साथ ही साथ हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी कि CD4 सेल की मात्रा को खत्म करता जाता है। जब CD4 सेल की मात्रा हमारे शरीर में इतनी कम हो जाती है कि हमारा शरीर किसी भी छोटी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, तभी इसका प्रभाव अलग अलग अवसरवादी बीमारियों के लगने से दिखने लगता है।
इसलिए हर व्यक्ति में ये समय अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई सवाल है, या फिर आप उससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे अपना सवाल बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें चिट्ठी व ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।
हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल एड्रेस है naydishaeedishaa@gmail.com।
और दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं उस पड़ाव पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की।
दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, पिंटो और अजीत को जब होश आता है तो वो खुद को जेल में पाते हैं। इधर जयपाल भी अपने गांव के लिए निकल चुका है।
उधर राजन को याद आता है कि अगर वो HIV पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह वो खून हो सकता है जो उसे एक्सीडेंट के समय चढ़ाया गया था। राजन की पत्नी शीला को ये डर है कि उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन राजन शीला को आश्वासन देता है और इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेने की बात कहता है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
लक्ष्मी, मेरी मदद करो। लक्ष्मी, मेरी मदद करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी,
भगवान, ये कैसा सपना था? वो ठीक तो है ना? ना, वो जरूर किसी मुसीबत में है। हे भगवान, या तो उन्हें वापस गांव भेज दे या मेरा ही शहर जाकर उनसे मिलने का कोई रास्ता खोल दे। अब यूं नहीं जिया जाता। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना।
डॉक्टर साहब, जरा जल्दी से इन्हें देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है।
आप कौन हैं?
जी, मेरा नाम सूरज है।
मेरा मतलब है, मरीज से आपका क्या रिश्ता है?
जी, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा हूँ। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने यहाँ ले आया।
देखिए, जब तक इनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आ जाता, तब तक हम ये केस नहीं ले सकते। और दूसरी बात, ये पुलिस केस है।
डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के केस में परिवार और पुलिस का होना जरूरी है, और इस कागजी कार्यवाही के बिना हम इलाज या एडमिशन नहीं कर सकते।
आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने इनके मोबाइल से इनके परिवार वालों को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। तब तक आप इलाज तो शुरू कीजिए।
लेकिन उससे पहले पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी।
और अगर तब तक ये मर गया तो?
I'm sorry।
क्या बात है डॉक्टर?
अरे शेखर जी, आप?
शेखर जी?
हाँ सूरज, मैं यहाँ किसी काम से आया था। लेकिन ये सब क्या है?
देखिए ना शेखर जी, ये आदमी मर रहा है और ये लोग हैं। कभी कहते हैं कि इसके परिवार वालों को आने दो, और कभी कहते हैं कि पुलिस पहले अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद ये लोग इलाज शुरू करेंगे।
डॉक्टर, ये किसी आदमी की जिंदगी का सवाल है, और पुलिस की फिक्र आप मत कीजिए, कमिश्नर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
लेकिन शेखर जी, फॉर्म पर मरीज के रिश्तेदार के साइन होने जरूरी है।
आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर, साइन मैं कर देता हूँ।
जी।
हेलो
जी, ये नशा मुक्ति केंद्र का ही नंबर है ना?
यस।
देखिए भाई साहब, मेरा बेटा वहाँ है, विनोद।
आप प्रधान जी बात कर रहे हैं?
जी नहीं, अभी तो सिर्फ विनोद का पिता बात कर रहा हूँ। क्या एक बार विनोद से बात करवा सकते हैं आप?
देखिए मिस्टर प्रधान, मैंने आपको पहले ही विनोद से मिलने और उससे बात करने से मना किया था भाई, इससे उसकी हालत और खराब हो सकती है।
जी मना तो किया था, लेकिन
देखिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता दूं कि विनोद की हालत में अब पहले से काफी सुधार हो रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आप उसे बात ना करें, दिस इज नॉट गुड।
जी मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, नमस्ते।
ओके, नमस्ते।
क्या कहा डॉक्टर ने?
सरिता, डॉक्टर ने कहा कि विनोद की हालत अब पहले से बेहतर है।
सच?
और जल्दी ही हम उसे घर ला सकेंगे।
देखिए जी, मैंने माता रानी को बोला था कि जब हमारा विनोद ठीक हो जाएगा तो मैं माता रानी के मंदिर में विनोद के नाम से पूजा करवाऊंगी, आप मना मत कीजिएगा।
अरे नहीं नहीं, बल्कि ये पूजा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे।
ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ।
डॉक्टर साहब, वो आदमी कैसा है अब?
सूरज, उसकी हालत बहुत खराब है, खून बहुत बह चुका है और खून चढ़ाना होगा।
अच्छा,
उसका ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है। हमारे पास इस ब्लड ग्रुप की सिर्फ दो ही बोतलें हैं, तुम्हें और दो बोतलों का इंतजाम करना होगा।
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी जाकर ब्लड बैंक से और खून ले आता हूँ।
हम पता कर चुके हैं, इस वक्त ब्लड बैंक में इस ब्लड ग्रुप की एक भी बोतल नहीं है, और जल्दी से जल्दी खून का इंतजाम करना होगा। वैसे मुझे याद आया, शेखर मेरा अच्छा दोस्त है, और जहाँ तक मुझे याद है उसका ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव ही है, तुम उससे बात करो।
नहीं डॉक्टर साहब, शेखर जी का खून इस आदमी को नहीं चढ़ाया जा सकता।
लेकिन क्यों?
बस डॉक्टर साहब, मैंने कह दिया ना, नहीं चढ़ाया जा सकता तो नहीं चढ़ाया जा सकता।
मैं नहीं कैसे बताऊं कि शेखर जी HIV पॉजिटिव है।
सूरज,
डॉक्टर साहब आप मेरा खून टेस्ट कर लीजिए, और हाँ, अगर मेरा खून मैच हो जाता है तो मेरा खून उस व्यक्ति को चढ़ाने से पहले उसकी HIV जांच भी जरूर करवा लीजिएगा।
क्यों, तुम्हें शक है कि तुम HIV पॉजिटिव हो?
नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं किसी को अपना खून दूं तो उसकी जांच जरूर हो। आखिर ये किसी की जिंदगी का सवाल है।
चलो, गांव तो जैसे तैसे पहुंच ही गया हूं, पर मैं गांव वालों का सामना कर पाऊंगा?
अरे जयपाल,
मखन, तू
यहां गांव में?
हाँ, क्यों क्यों,
कमाल है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू गांव वापस आ गया है।
हाँ, मैं बाबा आ गया हूँ। मैं
और अब कुछ दिन रुकेगा ना, या जल्दी चला जाएगा?
नहीं नहीं, अभी हूँ मैं।
ठीक है, फिर बाद में मिलता हूँ, अभी जरा खेतों पर काम है। चलो।
ये लोग तो मुझसे पहले की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो क्या ये तब भी मुझसे ऐसे ही बात करेंगे?
प्रेमा, कभी कभी तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन किस बात पर जगत?
लोगों की नासमझी पर।
मतलब?
मतलब क्या तुम आज भी आज के समय में छुआछूत को सही मानती हो?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो फिर क्यों लोग आज भी जात पात का भेदभाव करते हैं?
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जगत, और मुझे लगता है इसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाने की जरूरत है।
हाँ, तुम सही कहती हो,
लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे श्रोताओं के नजरिए से जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए।
हम लोग समूह में मिलकर इसको दूर भगाएंगे। जैसे कई बीमारियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, छूने से सारी बीमारियां नहीं फैलती है, कुछ बीमारियों के बारे में हमारे समाज में भ्रांतियां हैं कि ये छूने से फैलती हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
छुआछूत एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को जागरूक करूंगी कि छुआछूत न करे, और जहां पर छुआछूत हो रहा होगा वहां पे विरोध करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगी।
अगर मेरे समुदाय में छुआछूत होता हो तो मैं इसके लिए एक बैठक की व्यवस्था करूंगा। उस बैठक में ये कहना चाहूंगा कि हमें ये छुआछूत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत अगर हम किसी के साथ होती है, कल को अगर ये हमारे साथ हो गई, हो सकता है हम कुछ स्ट्रोक से सफरिंग हो, या हो सकता है हम HIV से पॉजिटिव से हों, या TB से हों, या मलेरिया से हों, तो ऐसे संक्रामक रोगों से हम भी पीड़ित हो सकते हैं, हमारे भाई भी पीड़ित हो सकते हैं, तो उनके साथ कोई करेगा तो उनको कैसा लगेगा।
और दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके वित्तीय सहयोग से कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और साथ ही साथ हम अपने सहयोगियों हैवलवानी, मंदाकिनी की आवाज, सामुदायिक रेडियो और सभी सामूहिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करते हैं।
और हाँ दोस्तों, सवाल का जवाब SMS करना ना भूलें। चाहें तो आप हमारा नंबर एक बार फिर नोट कर सकते हैं।
नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223।
और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।